निर्गमन अध्याय 27। अब बाहरी ओर उन्हें एक आंगन बनाना था जो कि 75 फुट चौड़ा और 150 फुट लंबा हो। इसके चारों ओर 7.5 फुट ऊंचे पर्दे लगाना। अतः ये आंगन का क्षेत्र 75 फुट चौड़ा तथा 150 फुट लंबा था। ये तंबू के बाहरी प्रांगण का नक्शा है। वहां चारों ओर 7.5 फुट के पर्दे लगे हैं कि अंदर झांकना संभव न हो। इन पर्दों को डंडों पर बांधना था और ये डंडे पीतल के सॉकेट में रोके जाते थे। जैसे मैं पहले कह चुका हूं, तंबू और उसका सारा सामान उठाकर ले जाया जाने वाला था। तब वे तंबू को खोलकर अपने साथ ले जाते थे और ये लेवी का गोत्र था जिसे तंबू को खोलना, समेटना और उठाकर ले जाना था। फिर आगे जहां वे डेरा डालेंगे वहां उन्हें दिए गए निर्देशों के अनुसार ही तंबू को फिर से गाड़ना था। अब आंगन में क्या क्या होना था। सबसे पहले आंगन में पीतल की एक वेदी बनवाना। फिर वेदी को बबूल की लकड़ी की 5 हाथ लंबी और 5 हाथ चौड़ी बनवाना। हमारे माप में 7.5 फुट लंबी तथा 7.5 फुट चौड़ी बबूल की लकड़ी की वेदी पीतल से मढ़वाना थी। ये पीतल न्याय का प्रतीक था। इसी के ऊपर बलिदान चढ़ाना होते थे। निर्गमन 27 पहला और दूसरा पद। इस वेदी की ऊंचाई 4.5 फुट थी। चारों कोने पर 4 सिंह बनवाना। निर्गमन 27 दूसरा पद। इस वेदी के चारों कोने पर 4 सिंह ढालकर बनाए जाए। प्रत्येक कोने पर 1 सिंह लगा हो। इसे पीतल से मढ़ा गया हो। उसने आपको पहले तंबू की साज सज्जा का, तंबू का, फिर बाहरी आंगन की साज सज्जा का, फिर बाहरी आंगन की स्थापना का विवरण दिया है। इसके आगे पद 20 में हम दीवट के लिए तेल के बारे में देखते हैं जिसे प्रकाश देना है। फिर तो इसराइलियों को आज्ञा देना कि मेरे पास दीवट के लिए कुट के निकला हुआ जलपाई का निर्मल तेल ले आना, जिससे दीपक नित्य जलता रहे। मिलाप के तंबू में उस बीच वाले पर्दे से बाहर जो साक्षी पत्र के आगे होगा, हारून और उसके पुत्र दीवट सांझ से भोर तक यहोवा के सामने सजा कर रखे। ये विधि इसराइलियों की पीढ़ियों के लिए सदैव बनी रहेगी। निर्गमन 27, 20 और 21 पर। इस सोने के दीपदान में जैतून का शुद्ध तेल डाला जाना था और हारून और उसके पुत्रों का कार्य था कि वे दीपदान की देखभाल करें कि ये निरंतर जलता रहे और कभी बुझने न पाए। अब आइए हम इसराइल का इतिहास देखें। शमूएल की मां ने उसे बालकपन में ही प्रभु को समर्पित करके मंदिर में छोड़ दिया था। शमूएल वहां याजक एली द्वारा दिया गया छोटा मोटा काम करता था। एक रात उसने किसी को अपना नाम पुकारते सुना। वो दौड़कर एली के पास गया और पूछा, क्या आपने मुझे पुकारा? एली ने उसे उत्तर दिया, नहीं, जाकर सो जा। वो जाकर सो गया, परंतु उसे फिर से अपना नाम पुकारे जाने की आवाज आई। वो फिर से एली के पास गया, परंतु एली ने उससे कहा, मैंने तुझे नहीं पुकारा है, तुझे हो क्या रहा है, जाकर सो जा। जब वो तीसरी बार एली के पास आया तब एली ने उससे कहा, यदि तुझे अब भी अपना नाम पुकारा जाने की आवाज आए तो कहना, प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। अब जब उसका नाम फिर से पुकारा गया तब उसने कहा, प्रभु कह, तेरा दास सुनता है। यहां परमेश्वर उससे ये कहना चाह रहा था कि दीपदान का तेल समाप्त होने जा रहा है, सेवक अपने उत्तरदायित्व से चूक गए हैं। इतिहास का हमारा संदर्भ देने का उद्देश्य ये है कि परमेश्वर का निर्देश था, दीपक नित्य जलता रहे। इतिहास में एक समय ऐसा आया जब रोम के शासक एंटियोकस एपिफेनस ने मंदिर में सुअर का बलिदान चढ़ाकर उसे दूषित कर दिया था और उसका लहू मंदिर में चारों ओर छिड़क दिया था। इस धर्म विरोध को देखकर जूडास मैकबीस में जलन पैदा हुई और उसने कुछ इसराइलियों को इकट्ठा करके मंदिर को छुड़ा लिया। अब वे मंदिर का समर्पण करना चाह रहे थे, परंतु उनके पास ज्योति दहन के लिए केवल एक ही दिन का समय था। इस तेल को नए सिरे से तैयार करने के लिए समय लगता था, क्योंकि आपको नियम और निर्देशों का पालन करना आवश्यक था। इस तेल को तैयार करने में एक सप्ताह का समय लगा। कहानी के अनुसार उस समय परमेश्वर ने ऐसा चमत्कार किया कि एक दिन के तेल से दीप 8 दिन तक जलते रहे। 8वें दिन उन्होंने फिर से तेल डाला। यहूदियों का हनुका पर्व यही है। इसमें वे 8 दिन तक प्रतिदिन मोमबत्ती जलाते हैं और परमेश्वर के उस चमत्कार को याद करते हैं जो उसने जूडास मैकबीस के लिए किया था।